परिशिष्ट 11, गैनरो पृष्ठ संख्या 183, गैनरो या ज्येष्ठ राजनेता, इल्डरली स्टेट्समैन। शब्दावली का प्रयोग जापान के उन व्यक्तियों के लिए गैर सरकारी रूप में किया गया जिन्होंने जापान में आधुनिक राज्य की स्थापना की थी। इनका अस्तित्व मेजी काल के मध्य तक बना रहा। ये सम्राट के प्रमुख सलाहकारों के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विचार प्रकट करते थे। लगभग सभी इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि 1912 में सम्मिलित किए गए दो गैनरों को मिलाकर इनकी कुल संख्या 9 थी। गैनरों की यह संस्था गैर संवैधानिक और अनौपचारिक थी, परंतु यह जापानी परंपरा के अनुरूप थी, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण मामलों में परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों के विचारों को स्वीकार किया जाता था। गैनरों का जन्म परंपरागत ज्येष्ठ परिषदों, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, जो तोकुगावा काल में बहुत प्रचलित थी, से हुआ था, परंतु इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1892 में एक समाचार पत्र में हुआ था। इसे कई बार गैनरोइन के साथ जोड़ा जाता है। गैनरोइन ज्येष्ठों का विधायकी सदन, लेजिस्लेटिव चैम्बर ऑफ एल्डर्स था, जो 1875 और 1890 के बीच कार्यरत या यूं कहे कि अकार्यरत था। परंतु गैनरों की स्थापना न तो इस सदन से और न ही उसकी भंग करने से ही जुड़ी थी। मेजी काल में गैनरों ने जापान के पुनः गठन, आधुनिकीकरण और राजनैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साए उन्जी किममोची, जो अंतिम गैनरों थे और शाही परिवार से आए थे, के अतिरिक्त अन्य सभी मध्य या निम्न दर्जे के समुराय थे। इसमें 4 चोशु और 4 सत्सुमा घराने के थे। इन दोनों घरानों ने 1868 के मेजी पुनः स्थापन में विशेष भूमिका निभाई थी। गैनरो भरोसेमंद विश्वसनीय व्यक्ति थे। सम्राट द्वारा योग्य और अनुभवी नेताओं को गैनकुन, जिसका अर्थ योग्य ज्येष्ठ या ज्येष्ठ राजनेता था, की उपाधि दी और उन्हें शाही सलाहकारों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया। इस तरह 1890 के दशक के प्रारंभ से ही सम्राट के निवेदन पर यह उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने की सलाह देते थे और राजनैतिक नौकरशाही में प्रमुख स्थान प्राप्त होने के कारण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में गैनरों के नाम से जाने गए। जिन मेजी नेताओं को 1889 में गैनकुन की उपाधि दी गई, वे इतो हिरोबुमि और कुरोदा कियोताका थे। बाद में 5 और व्यक्तियों को इसी उपाधि से सम्मानित किया गया और गैनरों की संख्या 7 हो गई। इनके नाम थे मत्सुकाता मयायोशी, ओयामा इवाऊ, सैगो तसुगुमिची, यामागाता अरितोमो तथा इनोउए काओरू। इन प्रारंभिक 7 गैनरों ने मेजी काल में सलाह देने के साथ साथ मेजी काल के मध्य तक मंत्रियों पर भी अपने प्रभाव को बनाए रखा। 1885 से 1900 तक सत्सुमा और चोशु गैनरों में से ही प्रधानमंत्री चुने गए। इतो 3 बार, यामागाता और मत्सुकाता 2-2 बार तथा कुरोदा 1 बार प्रधानमंत्री बने। सभी ने या तो विभिन्न मंत्रिमंडलों में या महत्वपूर्ण दरबारी पदों पर कार्य भी किया। कत्सुरा और साए उंजी 1912 में गैनरो बनाए गए। 1909 में ईतो की मृत्यु के बाद गैनरो का प्रभाव और संख्या कम होने लगी। सभी इतिहासकारों ने मेजी जापान के आधुनिक विकास में गैनरो की भूमिका के महत्व को स्वीकार किया है। इन्हें सिंहासन के पीछे की शक्ति, आंतरिक मंडली के नायक, कमांडर्स ऑफ द इनर सर्किल तथा जापान के वास्तविक शासक, द रियल रूलर्स ऑफ जापान की संज्ञा दी गई। परंतु इसके साथ कई इतिहासकारों द्वारा इस तथ्य पर भी जोर दिया गया कि इनके द्वारा सत्ता में हस्तक्षेप के कारण वास्तविक प्रतिनिधि सरकार का विकास नहीं हो पाया। एक विचारधारा यह भी है कि गैनरों के अस्थायी प्रभाव के कारण ही शीघ्र और महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव हो सके। मेजी शासन के प्रारंभ में इन्हें वित्तीय, सैनिक और लोक विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्य किया और अधिकतर संस्थात्मक सुधारों की नींव रखी। इन नेताओं में मेजी राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने की योग्यता थी। युद्ध और शांति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय इनके द्वारा ही किए जाते थे तथा आंतरिक और विदेशी नीतियों के साथ जुड़े होने के कारण इनका जापान की राष्ट्रीय दशा पर काफी नियंत्रण था। जब भी महत्वपूर्ण मामलों पर सम्राट या प्रमुख अधिकारियों द्वारा इनसे संपर्क स्थापित किया गया, तभी इन्होंने सलाहकारों के रूप में कार्य किया। इस प्रकार गैनरों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, परंतु दूसरी ओर इनके प्रभाव के कारण ही जापान में राजनीतिक दलों का स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हो सका। इसके परिणाम स्वरूप जापान में लोकतंत्र का विकास नहीं हो पाया।